उस काली शक्तियों के मालिक ने मलिका के साथ पूरे 3 से 4 घंटों तक मनमानी की थी। उस काली शक्तियों के मालिक की नज़र शुरू से मलिका के खूबसूरत शरीर पर थी, और अब जबकि उसे असीमित शक्तियां मिल चुकी थी, इसलिए अब उसे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किसी कुवारी कन्या के भोग की ज़रूरत नहीं थी। अब तो वो अपनी मन मर्जी से कहीं भी जा सकता था, किसी के भी साथ सो सकता था। जो भी लड़की हो या औरत हो, कोई भी उसे पसंद आ जाए, उसके साथ वो जो मर्जी कर सकता था। सो आज मौका मिलते ही उसने मलिका को अपनी हवस का शिकार बना लिया था, और फिर अपना काम करने के बाद वो उससे बोला था, तुमने बताया था कि तुमने तारा को अपने वश में कर लिया है, और तुम्हें अमन और मान की नज़रों में उसे गिराने के लिए किसी आदमी की ज़रूरत है, इसलिए तुम तारा को कल मेरे पास लेकर आना, एक होटल के कमरे में। तुझे सुनाई दे रहा है ना मैं तुझे क्या कह रहा हूँ? तू नहीं जानती मैं तारा को सूंघते ही पागल हो जाया करता हूँ, क्योंकि उस तारा को मैंने जब से देखा है तब से उसे पाने की एक ललक मेरे मन में उभरी थी, और अब ये अच्छा मौका है, मैं उसे पा भी लूँगा और वो अमन और मान की नज़रों में भी गिर जाएगी। मलिका मन ही मन उस काली शक्तियों के मालिक से नफरत कर रही थी। वो अपना हुक्म देकर वहाँ से जा चुका था, और जाते जाते एक बार पलटा मलिका की तरफ देखा, और देखते ही देखते मलिका के दोनों हाथ खुल गए थे, और मलिका बेजान सी निढाल होकर उस बिस्तर पर गिर पड़ी थी। मलिका कुछ देर ऐसे ही पड़ी रही, और फिर अचानक मलिका उठी और उस महलनुमा घर से बाहर निकल गई, और जंगल में उस जगह चली गई जहां आज से 25 साल पहले उसके साथ उसके प्रेमी ने विश्वासघात किया था। उसे आज भी अच्छे से याद है वो दिन, जिस दिन वो अपने ही गांव के सरपंच के लड़के के साथ इस शहर में भाग आई थी। कितनी सारी कस्में वादे करके वो उसे शहर ले आया था, और उसने उसी रात अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर इस जंगल में उसे नोच डाला था, और उसे वहीं अधमरी हालत में छोड़कर भाग गया था। आज फिर पूरे 25 साल के बाद उसकी हालत वैसी ही थी जैसी कि पहले थी। मलिका ने उसी जगह से कुछ लकड़ियां उठाकर एक जगह किया और उसमें आग लगा दी, और फिर मलिका उस भयानक आग में जाकर बैठ गई, और धीरे धीरे उसका बदन जलने लगा था। मलिका ने उस शैतान के छूने के बाद पानी की जगह खुद को आग से नहलाया था, क्योंकि वो अपने शरीर पर अपने मालिक का छूना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। पूरे 20 मिनट तक मलिका उस आग में चलती रही थी। पूरे 20 मिनट के बाद वो वहां से निकली थी। उसका खूबसूरत शरीर 90% तक जल चुका था। मलिका दर्द के मारे कराह रही थी, और उसका खूबसूरत शरीर अब बड़ा ही बदसूरत लग रहा था। जगह जगह से खाल छूटने लगी थी और अंदर की चमड़ी नजर आने लगी थी। उस वक्त कोई सामान्य इंसान मलिका को देखता तो वो पक्का अपने प्राण त्याग देता। तभी मलिका कुछ देर वो सारा दर्द सहती रही, और फिर थोड़ी देर के बाद उसने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया था, और देखते ही देखते उसका जला हुआ शरीर वापस से एकदम खूबसूरत हो गया था। मलिका मन ही मन बोली, काली शक्तियों के मालिक, तूने जहां जहां से मेरे शरीर को छुआ था मैंने उसे जला दिया और दूसरा शरीर पा लिया, क्योंकि मेरे इस शरीर पर अगर किसी का हक है तो वो सिर्फ और सिर्फ अमन का है, जिससे मैं दिल से सच्ची मोहब्बत करती हूँ। अपने प्रेमी के धोखे के बाद पहली बार मलिका ने किसी को दिल में बसाया था, और जब से उसे ये पता चला था कि अमन के मिलन से जो औलाद पैदा होगी वो बेहद शक्तिशाली होगी, तब से अमन को पाने की चाह उसके दिल में जन्म ले चुकी थी। अमन का ख्याल आते ही मलिका के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी, और वो सोचने लगी थी कि अब उस तारा को अपने रास्ते से हटाना होगा, और ये सोचकर वो अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए अमन के बंगले की ओर चल पड़ी थी। वहीं अगली सुबह करिश्मा जी बेहद खुश नजर आ रही थी। आज वो अपने बेटों की सगाई जो तारा से करवाने वाली थी। तारा परी जैसे ही उठकर बाहर आई तो हैरान रह गई थी। पूरा का पूरा बंगला दुल्हन की तरह सजा हुआ बेहद खूबसूरत लग रहा था। करिश्मा जी ने कल रात को ही अपने कुछ काम करने वाले जिन को हुक्म देकर पूरा का पूरा बंगला सजवा लिया था, और उन जिन्नों ने कुछ ही पलों में तरह तरह का खाना बनाने से लेकर सारा काम कर दिया था। तारा परी का मन बहुत ज्यादा खुश था। जैसे करिश्मा जी ने तारा परी को देखा, उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और बड़े ही प्यार से उसे नाश्ता खिलाने लगी थी। तारा परी ने देखा घर तो पूरा सजा हुआ था, लेकिन अमन और मान कहीं भी उसे दिखाई नहीं दिए थे। उसने करिश्मा जी से पूछा, करिश्मा मैम, अमन सर कहाँ है? तब करिश्मा जी बोली, बेटा मैम नहीं, माँ या मॉम बुलाओ, आज से तुम मेरी बेटी हो, और अमन और मान वो दोनों भाई बगीचे में गए हैं अपने दादा महाराज का आशीर्वाद लेने और वहाँ के पाक सरोवर में नहाने के लिए। वो जल्दी ही लौट आएंगे, तब तक तुम कुछ खा पी लो और थैला पकड़ो, इसमें तुम्हारे लिए कपड़े हैं आज के फंक्शन में पहनने के लिए, तुम आज यहीं पहनोगी, ओके? आओ शाबाश, जल्दी से कुछ खा लो और फिर तैयार हो जाओ। तब तारा परी बोली, लेकिन मैम, ओ सॉरी मॉम, यहाँ तो कोई मेहमान नहीं है, तो क्या हमारी सगाई में कोई मेहमान नहीं आएगा? तब करिश्मा जी बोली, बेटा क्यों परेशान होती हो, एक मिनट। तभी करिश्मा जी ने कुछ बढ़कर अपनी हाथ की चुटकी बजाई और चुटकी बजाते ही कितने सारे आदमी औरतें अच्छे से सजे धजे हुए वहां दिखाई देने लगे थे, मानो उन्हें सगाई का कार्ड भिजवाकर बुलाया गया हो। तारा परी ये देखकर काफी हैरान हो गई थी। उसको हैरान देखकर करिश्मा जी उसके पास गई और बोली, नहीं बेटा, मैं जानती हूँ तुझे ये सब कुछ बेहद अजीब लग रहा होगा, पर धीरे धीरे तुझे इन सब चीजों की आदत हो जाएगी। करिश्मा जी ने उसे मुस्कुराकर कहा और वो अपना कुछ काम करने अपने कमरे में चली गई और तारा परी मुस्कुराती हुई करिश्मा जी के दिए हुए कपड़े लेकर अपने कमरे में चली गई थी। तारा परी अपने कमरे में गई और उस खूबसूरत ड्रेस को देखने लगी थी। वो एक बेबी पिंक कलर का गाउन था, उस पर बेहद लाइट वर्क किया गया था, हाफ स्लीव थी एंड वो पूरा लॉन्ग था, जैसे किसी शहजादी का कोई ड्रेस हो। इतनी खूबसूरत ड्रेस देखकर वो सोचने लगी थी कि इतनी प्यारी ड्रेस तो परीलोक में भी उसके पास नहीं थी। उसका दिल चाह रहा था कि इस ड्रेस को बस यूं ही देखती रहे। आज कितने दिनों के बाद उसे किसी और चीज से लगाव महसूस हुआ था, वरना एक समय था कि तारा परी एक छोटे से फूल को खिलता हुआ देखकर भी खुश हो जाती थी, लेकिन उस राक्षस ने तो मानो उसके अंदर की जिद, शरारत, प्यार, मोहब्बत, मान, एतबार सब कुछ खत्म सा कर दिया था। आज कितने सालों के बाद किसी ड्रेस को लेकर वो बच्चों जैसी खुशी महसूस कर रही थी। और तारा परी ने सोचा, इसे इस तरह से देखने से तो अच्छा है क्यों ना इसे पहन लिया जाए। और तारा परी वो ड्रेस पहनने ही जा रही थी कि तभी उस खिड़की में से उसे वो बिल्ली वापस आती हुई दिखाई दी थी। तारा परी को उस वक्त उस बिल्ली का आना बेहद बुरा लगा था, क्योंकि इस वक्त वो अपनी उस ड्रेस को जल्द से जल्द पहनना चाहती थी, लेकिन उस बिल्ली के आ जाने से उसका मूड खराब हो चुका था। तभी वो बिल्ली अंदर आते ही मल्लिका के रूप में आ गई थी। तारा परी ने अपना मन मारते हुए वो ड्रेस वहीं बेड पर रख दी थी, क्योंकि उसे अब मल्लिका के वश में होने की एक्टिंग जो करनी थी। मल्लिका उसके कमरे में आ गई थी और आते ही उसने तारा परी को हुक्म दिया था कि हे लड़की, मेरा हुक्म है, जो मैं ये कपड़े अपने साथ लेके आई हूँ इन्हें पहनो।
तारा परी को मल्लिका का सच पता करना था और वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, सो उसे उसकी बात माननी ही पड़ी थी। और उसने मल्लिका के हाथ से वो कपड़े लिए और चौंक गई, क्योंकि वो कपड़े नहीं थे, केवल कपड़ों के नाम पर एक छोटा सा हाफ कपड़ा था जिसमें दो बारीक तनी लगी हुई थी। तारा परी उस कपड़े को देखकर गुस्से से भर उठी थी। उसका दिल तो चाह रहा था कि इस मल्लिका को अभी यहाँ से उठाकर बाहर फेंक डाले और उसे बताए कि वो मामूली से चुड़ैल किसे हुक्म देने की हिम्मत कर रही थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। उल्टा वो अपने आप पर कंट्रोल किए रही थी, क्योंकि उसे ये भी पता था, अगर वो आज सब्र कर लेगी तो बहुत आसानी से वो उसके बॉस का पता लगा सकती थी। सो तारा परी के पास और कोई रास्ता नहीं था, सो मजबूरन उसे वो कपड़ा पहनना पड़ा था। उसे कपड़े के नाम पर कलंक कहना बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि उस कपड़े से तारा परी का आधे से ज्यादा शरीर दिखाई दे रहा था। तारा परी काफी असहज महसूस कर रही थी, लेकिन वो मजबूती से खड़ी रही थी। तब मल्लिका ने उसे हुक्म दिया कि पीछे वाले रास्ते से वो उसके साथ चलें, वो उसकी मालकिन है और जैसा वो उसे हुक्म देगी उसे मानना ही पड़ेगा। तब तारा परी का माथा ठनक गया था। एक बार को उसके मन में आया कि वो ये सब कुछ खत्म करे और उसका बुरा हाल करके उसे यहाँ से भगा दे और उसे बता दे कि वो कौन है, लेकिन न जाने क्या बात थी कि तारा परी उसकी बात मानने के अलावा कुछ और नहीं कर पाई थी। शायद आज वो ये जानना चाहती थी कि आखिर है कौन इन सबके पीछे। इसके लिए वो आज सब कुछ करने को तैयार थी, लेकिन वो मालिका के कहने पर उसके साथ उस खिड़की से बाहर निकलने के लिए चल पड़ी थी। लेकिन खिड़की तक पहुंचते ही तारा परी ने मल्लिका से कहा, मालकिन मुझे अभी वॉशरूम जाना है। मल्लिका थोड़ा नाराज होती हुई बोली, ठीक ठीक है, जाओ जाओ। ऐसा कहकर मालिका ने तारा परी को वॉशरूम में भेज दिया था और अभी कुछ ही देर हुई थी कि तभी तारा परी वॉशरूम से बाहर आ गई थी। मल्लिका ने उसे बड़े ध्यान से देखा, वो एकदम खोई खोई सी थी। मल्लिका को लगा शायद उसने उसे वश में कर रखा था, इसलिए वो ऐसी हो गई थी। मल्लिका ने उसे कहा, अब तुम चलने के लिए तैयार हो? तारा परी बोली, जी मालकिन। ऐसा कहकर मल्लिका उसे बाहर की ओर ले जाने लगी थी। मल्लिका ने अपने जादू से तारा परी को उस खिड़की से बाहर निकाला और एक नज़र उस खूबसूरत ड्रेस को देखती हुई खुद भी बाहर निकल गई। और जल्दी ही मल्लिका तारा परी को पास के होटल में ले गई, जहां उसके मालिक ने उसे आने के लिए कहा था।